ओम शांति। पल पल है भारी विपदा आई है। क्यों विपदा क्यों आई है? सीता पर ये विपदा क्यों आई है? राम को भूलने के कारण और इच्छा और मर्यादा का उल्लंघन और सीता शोक वाटिका में क्यों चली गई? स्वयं की विस्मृति मोह के कारण। लक्ष्मण रेखा को पार कर दिया। सीता की शोक वाटिका की यात्रा की साथ अवस्थाएं है। 7 stages। जब ये 7 बातें हुई तो सीता शोक वाटिका में पहुंच गई। सबसे पहली बात आकर्षण। किसका आकर्षण? सोने के मृग का आकर्षण। देखा और इच्छा हुई और उसकी तरफ आकर्षित हुई। संसार में सोने के मृग कई है। इस ब्रह्मा कुमारी जीवन में भी सोने के कई सारे मृग हैं। और जब जब कोई एक भी सोने का मृग आकर्षित करेगा तब तक शोक वाटिका में जाने की यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। किसी का धन आकर्षित कर सकता है तो किसी का रूप तो किसी का पद। किसी का सहयोग और शायद ये हम भूल जाए कि ये सहयोग यज्ञ को कर रहा है मुझे नहीं। तो आकर्षण और भी बढ़ जाता है। अव्यक्त महावाक्य बाबा के दिल्ली के लिए जगदीश भाई से कहे थे कि सेंटर ऐसा हो जो किसी भी विकारी की दीवार से टच ना हो। सेंटर ऐसा हो, दूसरी बात, किसी भी विकारी का पैसा न लगे। और तीसरी बात, वो केवल दिल्ली के लिए थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के सामने हो। अभी अभी ठीक है, फैन बंद कर दीजिए। तो पहली बात, ऐसा किसी का सहयोग नहीं लेना है क्योंकि वो धनवान है। इस यज्ञ की ईंट से ईंट पवित्रता की बनी हुई हो, नहीं चाहिए ऐसे किसी का सहयोग। झोपड़ी रह जाए तो चलेगा, नहीं बनाना है रिट्रीट सेंटर। जो है वही ठीक है। आकर्षण करता है, दूसरा है इच्छा। मृग ने पहले आकर्षित किया और फिर इच्छा हुई उस मृग को पाने की। पहले दिखा, खिंचाव हुआ और फिर मिल जाए, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए। वो इच्छा सूक्ष्म हो सकती है, वो इच्छा अनैतिक भी हो सकती है, वो इच्छा विकार की भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। सीता को इच्छा हुई, ये मृग मुझे चाहिए। तीसरी अवस्था जिद, मुझे चाहिए मतलब चाहिए, कितना भी समझाया नहीं मानी। सोने का कोई मृग नहीं होता, परंतु मुझे चाहिए और यही चाहिए। जिस पे दिल आ जाता है, फिर व्यक्ति ये भूल जाता है वो कौन है और मैं कौन हूं। एक सेंटर की ब्रह्मा कुमारी बहन सेंटर पर आने वाले एक भाई से ही प्रेम हो गया, जो कि मुस्लिम धर्म का था। केवल सहयोगी था, रेगुलर भी नहीं था। और वो प्रकरण इतना बढ़ गया कि एक दिन उस और एक दिन वो जो भाई था, उसकी पत्नी, उसकी युगल सेवा केंद्र पर आ गई झगड़ा करने के लिए। तुम लोग सिखाते क्या हो और करते क्या हो, इसे क्या कहा जाएगा? शुरुआत आकर्षण से है, बाद में इच्छा और बाद में जिद का रूप धारण करती है। और जब जिद हो जाती है, तब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वो किसी व्यक्ति को नहीं देखती फिर, जो जिद का पदार्थ है वही चाहिए, जो व्यक्ति है बस वही चाहिए, जो वस्तु है बस वही चाहिए। जिद विवेकहीन है। चौथी अवस्था सीता की, रावण की आवाज को, उस मारीच की आवाज को राम की आवाज समझ लिया। उधर से वो मारीच को बाण लगा और उसने पुकारा, हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण। वो आवाज तो दैत्य की थी, असुर की थी, उस मारीच की थी, पर सीता को क्या लगा, ये राम पुकार रहा है। वो है मनमत और परमत, परंतु आत्मा सोचती है यही श्रीमत है और उसी में फंस जाती है, क्योंकि आवाज समान है, क्योंकि रावण या असुर या माया अपने मस्तक पर लिख कर नहीं आती कि मैं माया हूं। माया सफेद साड़ी और बैच लगा कर आती है, इसलिए ये पहचानना भी मुश्किल है कि यही माया है। राम की आवाज समझ ली। ये चौथा सोपान। पांचवा अविश्वास। क्या उस राम पर कोई संकट आ सकता है? परंतु अविश्वास। क्या वो जो सबका पालनहार है, क्या मेरी रक्षा नहीं करेगा? ये इस ज्ञान मार्ग में अविश्वास। आगे क्या होगा, बुढ़ापे में क्या होगा, कोई देखने वाला होगा कि नहीं होगा? अगर कुछ हो जाए तो क्या होगा? भय, अनिश्चिंतता, असुरक्षा का भाव कूद गए हैं इस जीवन में। आगे क्या होगा? दे दिया जीवन इस यज्ञ में, अब किस बात की चिंता? ओखली में सर दिया तो मूसलों से क्या डर? ये यज्ञ ही ओखली है, ये सेवा केंद्र ही ओखली है, ये पब्लिक जीवन, ये पब्लिक लाइफ ही ओखली है, ये मधुबन ही ओखली है, ये समर्पित जीवन ही ओखली है। फिर कैसा भय? राजी तेरी रजा में मुझे ऐतराज क्या है? झोंक दिया है जीवन इसमें। दादियों ने कभी सोचा होगा, जब छोटी छोटी कन्याओं ने अपना जीवन स्वाहा कर दिया, आगे यज्ञ का क्या होने वाला है, तब कुछ भी उन्हें पता नहीं था। परंतु आज हमारे मन में कितने सारे प्रश्न हैं। क्यों ऐसा? अटल विश्वास, निश्चय, फेथ। होई सोई जो राम रचि राखा, उसको जीवन दिया है, अब वो देखेगा। किसी देहधारी को जीवन नहीं दिया है, वो जो परम है उसको दिया है। तो सीता का विश्वास, जो सबकी रक्षा करने वाला है उस पर अविश्वास, जो तारनहार है उस पर अविश्वास, जो सकल जगत का स्वामी है उस पर अविश्वास। ये पांचवी भूल। छठवी, रावण को न पहचान पाना, क्योंकि रावण जब आता है तब साधु के वेश में आता है। क्योंकि रावण जब आता है तो अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं आता, बड़े ही सूक्ष्म रूप में आता है। और हर दिन का रावण अलग है, हर दिन की माया अलग है, हर दिन वो नित नए रूप धारण करता है, बहु रूपी है और सर्वव्यापी भी है। जिस रूप में वो कल आया था, आज उस रूप में वो नहीं आएगा। जैसे हम अपनी गलतियों से सीखता है, वो भी अपनी गलतियों से सीखता है। कल तुमने उसे पहचान लिया था, आज उसी रूप में नहीं आएगा। जैसे एक टोपी बेचने वाला जंगल से गुजर रहा है, थका थक जाता है, एक झाड़ के नीचे सो जाता है, अपनी टोपियां रख कर, उसी झाड़ पर बंदर है, सभी बंदर आते एक एक टोपी पहन लेते हैं। जब वो उठता है तो उसकी पूरी टोपियों का थैला खाली, क्योंकि सभी बंदरों ने एक एक टोपी पहन ली है। तो वो एक युक्ति करता है, अपनी जो पहनी हुई टोपी है वो निकाल कर नीचे फेंकता है, तो सारे बंदर भी अपनी अपनी टोपियां नीचे फेंकता है और वो खुशी खुशी से चला जाता है। उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर उसका बेटा, वो भी टोपियां बेचने का व्यवसाय करता है, और एक दिन वहीं से जा रहा है, उसी जंगल से, और वो भी थक गया है और उसी पेड़ के नीचे सोया। और थोड़ी देर बाद जब उठता है तो देखता है सभी बंदरों ने टोपी पहन ली। उसे अपने बाप की बात याद आती है कि मेरे बाप ने क्या किया था। तो वो अपनी टोपी निकालकर जमीन पर पटक देता है, एक बंदर आता है और वो टोपी उठाकर ले जाता है, क्योंकि उन्होंने भी अपने बाप दादाओं से सीखा है कि ऐसी गलती फिर नहीं करेंगे। हम तो सीख रहे हैं पर माया भी सीख रही है, इसलिए माया का हर दिन नया रूप है। भगवान को पहचानना बहुत मुश्किल काम है, कोटों में कोई और कोई में कोई, और जिन्होंने भगवान को पहचान लिया, जान लिया, उनमें से भी माया को पहचानने वाले भी बहुत गिने चुने हैं। भगवान को पहचानना सहज है, जगदीश भाई जी ने लिखा है कहीं, परंतु माया को पहचानना उससे कई गुना अधिक, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं माया के रूप ही बदलते जाते हैं, और जब पूरा फंस जाते हैं तब पता चलता है ये माया है। ये छठवां और सातवां लक्ष्मण रेखा को पार कर दिया। ये छह बातें हो गई, एकदम नहीं पार किया, इतनी शक्ति नहीं थी, ये छह हो गई और इसके बाद में सातवां लक्ष्मण रेखा पार, जो मर्यादा थी उस मर्यादा को तोड़ दिया। और जब मर्यादाएं टूटती है तब आत्माएं दुखी होकर आत्मग्लानि में डूब जाती है। फिर कुछ भी करो उससे बाहर निकलना मुश्किल है। जो जो इस यज्ञ से गए हैं बाहर, कभी ना कभी पश्चाताप करना पड़ेगा, क्योंकि ये अंतिम हट्टी है। सुबह की अव्यक्त वाणी पार्टी नंबर 2, मुरली केवल वो है जो मधुबन में चलती है, श्रीमत केवल वो है जो मधुबन से आती है, पढ़ाई केवल वो है जो मधुबन से पढ़ाई जाती है। कोई अगर ये कहे कि यहां मधुबन है और यहां वो आता है और वहां वो आता है और इसके तन में आता है और उसके तन में आता है, सर्वनाश का कारण होगा। जो ब्रह्मातन द्वारा मुरली चलती है बस वही मुरली है, उसी मुरली में जादू है और किसी मुरली में जादू नहीं। महाराष्ट्र में कभी कोई एक संत हुआ था, अरविंद महाराज, वो कहता था मेरे तन में गजानन महाराज आते हैं, और वो हुक्का पीता था तो हुक्के की स्मेल, सुगंध आती थी जैसे वो प्रवेश करते थे उनमें। ऐसे ढेर सारे लोग विश्व भर में हैं, कोई कहता है इधर, कोई कहता है उधर, सब माया के धोखे हैं। सात अवस्था है आकर्षण, इच्छा, जिद करना, राम की आवाज को न पहचान पाना, अविश्वास करना, किसी ने कुछ कह दिया और चले उधर, उसके बाद रावण को नहीं पहचान पाना कि यही रावण है, यही माया है, और सातवां उससे क्रॉस करना और सीधा शोक वाटिका में। जटायु का कोई संबंध है इस शहर से? क्या संबंध है? जटायु ने रक्षा की थी सीता की। इधर ही मंदिर है, यहीं पर समाधि है जटायु की, मंदिर भी है। उसने कोशिश की थी और प्राण दे दिए थे, किसको बचाने के लिए? सीता को बचाने के लिए। हमें अभी आत्मा रूपी सीताओं को बचाना है, हम भी जटायु है एक रीति से। आज का हमारा टॉपिक कुछ और था, माया गुरु की पाठशाला। जैसे ये शिव बाबा की पाठशाला है, माया की भी एक पाठशाला है, और उस पाठशाला में सारे संसार के विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। वहां काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के पाठ पढ़ाए जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। माया भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। वास्तव में सबसे बड़ा टीचर माया ही है, अर्थात विकार, अर्थात कमजोरी। क्योंकि जब जब हम कमजोर हुए और जब जब हम गिरे, हमें हर कमजोरी से, हर विकार से, हर गिरने से कुछ ना कुछ सीखना है। और माया हमारी बहुत सी परीक्षाएं लेगी, एक ब्रह्मा कुमारी में के जीवन में आने वाली बहुत सी परीक्षाएं। ऐसी 10 परीक्षाओं की हम चर्चा करेंगे। ऐसी कोई भी ब्रह्मा कुमारी नहीं विश्व भर में जिसके जीवन में ये परीक्षाएं नहीं आएगी। और एक से एक परीक्षा, एक से बढ़कर एक है, पूरी नींव को हिला देने वाली है, अस्तित्व को हिला देने वाली। परंतु जब ये परीक्षाएं माया लेगी, अड़ोल रहना है, सीखना है, हर मिस्टेक से सीखना है। तीव्र पुरुषार्थ की बाबा ने कभी परिभाषा दी है, तीव्र पुरुषार्थ अर्थात एक गलती जो कर ली वो दोबारा न करना, यह है तीव्र पुरुषार्थ। 3 परिभाषा है तीव्र पुरुषार्थ की अलग अलग मुरलियों में। पहली परिभाषा जो कल प्रश्न उत्तर सेशन में बताई थी, 21 जनवरी 1969 की मुरली, तीव्र पुरुषार्थ अर्थात समय पर ज्ञान याद आ जाना। ज्ञान तुम्हारे पास बहुत है पर समय पर याद आ जाना, यह है तीव्र पुरुषार्थ। एक दूसरा तीव्र पुरुषार्थ अर्थात एक बार की हुई गलती फिर से रिपीट न करना, यह है तीव्र पुरुषार्थ। गलतियां करना पाप नहीं है, सभी गलतियां करते हैं, परंतु वही गलती दोबारा करना यह पाप है। एक बार गिर गए, एक बार धोखा हो गया, फिर से धोखा, फिर से आकर्षण, फिर से इच्छा, फिर से जिद, फिर से पहचान ना पाना, फिर से अविश्वास, फिर से रावण को ना जान पाना और फिर से लक्ष्मण रेखा पार। एक बार शोक वाटिका में चले गए, अब दोबारा शोक वाटिका में जाने की तैयारी? शोक वाटिका, अशोक वाटिका, शोक वाटिका, अशोक वाटिका, इधर से उधर, उधर से उधर, कभी इधर कभी उधर, एक कदम आगे एक कदम पीछे, ऐसा ही पुरुषार्थ तो नहीं चालू है। सबसे पहला पेपर लौकिक, स्वजनों की मृत्यु, स्वजनों की बीमारी और स्वजनों की आर्थिक कमजोरी हलचल में ला देती है। इधर तीन नियम आर्मी में या संन्यास में होते हैं। पहला ये और ये बीच में खाई है। जब आर्मी के लोग इधर से उधर जाते हैं, एक पुल डालते हैं और पुल से इधर चले जाते हैं, बाद में पुल को काट देते हैं ताकि वापस आने का कोई मार्ग ना रहे। जिंकु कि वहा मरु, युद्ध आमुचे पूर्ण करू, कट द ब्रिज। उधर से इधर आने के बाद क्या करना है? कट द ब्रिज, पहला नियम। दूसरा नियम, थ्रो द लैडर, नीचे से ऊपर चढ़ने के बाद, ऊपर पहुंचने के बाद जो सीढ़ी है उसको उठा के फेंक दो। तीसरा नियम, ड्राउन द बोट, उस किनारे से इस किनारे आने के बाद जो नाव में बैठ के आए थे उस नाव को डुबो दो, ताकि उस दुनिया में जाने की वापस कोई साधन, कोई मार्ग ना बचे। उस लौकिक से इस अलौकिक में आ चुके हैं, परंतु अब भी सारा ध्यान उधर ही है, अब भी फोन कॉल उधर ही चालू है, अब भी उधर की दाल भात, दाल रोटी अब भी आकर्षित करती है, अब भी मम्मी के हाथ का ही अच्छा लगता है। उस दुनिया से इस दुनिया में आ चुके हैं। कट द ब्रिज, राउंड द बोट एंड थ्रो द लैडर, ये तीन नियम है। हाँ, तोड़ निभाना वो अलग चीज है, परंतु तोड़ निभाने के नाम पर अपने मोह का ही पोषण चल रहा है। एक सेवा केंद्र पर हम गए थे तो बड़ी बहन जी कहती थी, हमारी छोटी बहनों को समझाओ, अगर उनको कुछ कह दिया तो कहती है मैं तो चली, तुरंत नाराज हो जाती है, बार बार धमकियां देती है, उनको कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अब भी मोह बाकी है, वो दुनिया नष्ट हो गई है, उस दुनिया से इस दुनिया में आ गए। अगर यहां आने के बाद भी वहां की याद है तो वो दाल और भात और रोटी एक दिन वापस वहीं पहुंचा देंगी जहां से आए थे। अब उस दुनिया से क्या लेना देना, वो दुनिया मर चुकी है। मेरा भाई शराब पीता है और इधर ब्रह्मा कुमारी परेशान है। दुनिया में हजारों लोग शराब पीते, उनकी तो कभी चिंता नहीं की। मेरे भाई को जॉब नहीं लग रहा है, वो जाने और उसका जॉब जाने, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें विश्व कल्याण करना है। एक ब्रह्मा कुमारी बहन ने अनुभव सुनाया था, रोते हुए, क्या करूं, इतना बड़ा पाप हो गया, सेंटर की सारी भंडारी के पैसे घर भेजती रही, क्योंकि घर में आर्थिक समस्या थी। अब किसको बताऊं, बड़ी बहन को बताऊं, किसको बताऊं, कितनी ग्लानि और निंदा हो जाएगी। और वो पैसा सफल भी नहीं हो पाया घर पे, ये भी तो चोरी है। पर व्यक्ति विवश हो जाता है मोह के कारण, मोह परवश कर देता है, पागल और विक्षिप्त कर देता है। कुछ भी करने को व्यक्ति राजी हो जाता है। संसार के लोग तो पश्चाताप करेंगे, पर सबसे ज्यादा पश्चाताप ब्राह्मण करेंगे। खून के आंसू यहां बहेंगे कि सब कुछ भगवान ने दिया, उसके बाद भी गलतियां की, उसके बाद भी विकर्म और पाप किए। एक साधारण नागरिक पाप करता है तो इतना बड़ा अपराध नहीं है, परंतु जब राजा पाप करता है तो बहुत बड़ा अपराध है। एक एक ब्रह्मा कुमारी एक एक राज्य का राजा है, स्टेज पर है, ये पेपर आएगा। स्वजनों की बीमारी, उधर बीमार इधर हलचल, उधर मृत्यु इधर आंसू, आत्मा की अमरता का पाठ पढ़ाने वाली ही आंसू बहा रही है। किस लिए, क्योंकि किसी ने शरीर छोड़ दिया, इसलिए क्या यही नष्ट मोह स्थिति है। मुरली चली थी जून मास में, बच्चे बाप से कहते बाबा हमारी मम्मा चली गई, बाप कहते तुम भी जाओगे, अब तुम्हारा नंबर है, तुम्हारी मम्मा गई ना, अब तुम्हारा भी नंबर है अगला, तैयार हो जाओ मरने के लिए। सारे मोह बंधन को हटाना है, नहीं तो दुख होते रहेगा, और यदि दुख है तो कारण है मोह। कौन माँ, कौन बाप, कौन भाई, कौन किसका क्या। जीसस क्राइस्ट अपने शिष्यों से कहता है, ही दैट लवेथ हिज मदर एंड फादर मोर देन मी इज नॉट वर्दी ऑफ मी, ही दैट लवेथ हिज ब्रदर एंड सिस्टर मोर देन मी इज नॉट वर्दी ऑफ मी, जो अपने लौकिक माँ बाप बहन भाई को मुझसे अधिक प्रेम करता है वो मेरे लायक ही नहीं है। केवल मुझसे प्रेम करो, केवल मैं और मुझसे बस। ये पहला पेपर आएगा। हाँ, दूसरी बात है तोड़ निभाना, सेवाएं करनी है परंतु मोह के वश नहीं, आत्मा समझकर सेवाएं करनी है परंतु देखकर, अगर कोई दूसरा है उनकी देखभाल करने तो छोड़ दो। कितनी सारी ब्रह्मा कुमारी हमने देखी है जो अपने माँ और बाप, सारा ब्रह्मा कुमारी जीवन छोड़कर आधा से ज्यादा टाइम उसी में लगा हुआ है। जीवन किस लिए दिया था, और ऐसा नहीं कि वो कुछ अरेंजमेंट नहीं कर सकती, कर सकती है। परंतु मोह ही इतना ज्यादा है। एक व्यक्ति को वैराग आ गया क्योंकि माँ बाप इतना उसको प्यार करते थे, ओवर केयरिंग, ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स थे, और महात्मा बुद्ध उसी समय कहीं थे आसपास, कहीं विहार में। वो कहता था मैं चला जाऊंगा, संन्यास ले लूंगा, और एक दिन वो लड़का दिखा ही नहीं, तो माँ बाप को चिंता होगी कहाँ चला गया। और उन तीनों का भी आपस में बड़ा मोह था। पिता उसको ढूंढने गए अपने बेटे को, बहुत ढूंढा नहीं मिला, फिर पता चला शायद वहां होगा, वो भी वहां पहुंच जाते महात्मा बुद्ध के विहार में, और वो कहते मुझे भी संन्यास लेना है, और वो भी संन्यास ले लेते हैं। माँ घर में बेचैन होती है, वो ढूंढने निकलती है अपने पति को और बेटे को, नहीं मिलते, वापस ख्याल आता है कि शायद वहां होंगे, वो भी पहुंच जाती है और वो भी संन्यास ले लेती है। अब तीनों ही संन्यासी सुबह सुबह साथ साथ उठते हैं, साथ साथ भिक्षा मांगने जाते हैं, साथ साथ भोजन करते हैं, जो उधर लौकिक में करते थे अभी इस संन्यास जीवन में भी वही कर रहे हैं। साथ साथ भिक्षा मांगने जाओ, साथ साथ प्रवचन सुनो, साथ साथ भोजन करो, साथ साथ सो, ये कैसा संन्यास है? भगवे कपड़े वाला संन्यास, केवल नाम मात्र, ये संन्यास नहीं है। मोह का पोषण हो रहा है संन्यास के अंदर। ये पहला पेपर, लौकिक अनासक्त वृत्ति। दूसरा पेपर है शरीर की बीमारी। दूसरा पेपर शरीर की बीमारी। कोई कितना भी कहे कि मैं स्वस्थ हूं, परंतु बीमारी आएगी, और ऐसी बीमारी आएगी कि कभी सोची नहीं होगी। एक बहन है ब्रह्मा कुमारी, 25 वर्ष की उम्र होगी लगभग, 25 या 30 के अंदर, गीता पाठशाला पर स्कूटर पर जा रही थी, एक्सीडेंट हो गया, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, दोनों हाथ और दोनों पैर पैरालिसिस, इतनी भी उंगली नहीं हिलती है, कितने मास से बेड पर पड़ी हुई है, हॉस्पिटल आती रहती है, एडमिट होती है, फिजियोथेरेपी, मैग्नेट थेरेपी, कुछ काम नहीं करता। उसकी लौकिक बहन है, बस वो उसकी सेवा करती है, उसको उठाने के लिए और चेयर पे बिठाने के लिए 4 लोग लगते हैं, परंतु एक बात हमने देखा, उसके चेहरे पर कभी भी दुख की रेखाएं नहीं थी, निरंतर जैसे बाबा की याद में है, कोई दर्द नहीं, कोई प्रश्न नहीं। कितना कड़ा हिसाब किताब है, क्या उसकी भूल थी, पर कैसी बीमारी आ गई। एक दूसरी बहन है, हॉस्पिटल में आती रहती है, पहले चल पाती थी, अब धीरे धीरे चलना बंद हो गया, दीवार को पकड़ पकड़ के चलना पड़ता है, धीरे धीरे और कम होते जा रहा है, क्योंकि बीमारी ऐसी है, फ्रेडरिच अटैक्सिया, एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर जिसमें व्यक्ति का चलना धीरे धीरे बंद हो जाता है। बीमारियां निमंत्रण देकर नहीं आती, अचानक आती है, धक से आती है, और किसी को भी आ सकती है, और यह भी एक कड़ा पेपर है, और आ जाए तो उसे शक्तिशाली स्थिति से उसका सामना करना है, रोना, ये क्या वो क्या। हमको याद है मुंबई में हम थे, एक ब्रह्मा कुमारी बहन, पता नहीं कितने सेंटर उसने खोले होंगे और लाखों का कोर्स और कितनी कन्याओं को तैयार किया होगा, परंतु जब कैंसर शरीर में फैल गया, इतनी बेचैनी, इतनी इरिटेबल, बाबा का नाम तक नहीं, चिड़चिड़ापन चिड़चिड़ापन, इतना चिड़चिड़ापन, कोसना हरेक को। और जब अंत समय आया तो मसाला डोसा उसको खाने की इच्छा हुई, और मसाला डोसा खाते खाते ही शरीर छोड़ा, बाबा एक तरफ, एक दूसरा भाई था, इतनी सेवा की उसने, 20 साल तक दिन रात सेवाएं की, पर केवल सेवा की, ज्ञान और योग की तरफ इतना ध्यान नहीं, रुचि नहीं, टाइम कहाँ है ज्ञान योग के लिए, भट्टियों के लिए कहाँ टाइम है, केवल सेवा करते रहो, सेवा करते रहो। जब वो एक बार बीमार पड़ा, इतना दुखी हो गया, एक दिन सेवाधारी नहीं था, यहां तक सोचने लगा वो समर्पित भाई, अगर मैंने शादी कर ली होती तो आज मेरी पत्नी और बच्चे मुझे देखने के लिए होते, कैसी अवस्था आ गई। क्या उसने सेवा नहीं की? सेवाएं तो अनन्य भाव से की, परंतु केवल सेवाएं की, और सेवा इज द फोर्थ सब्जेक्ट, ये भूल गया कि पहला सब्जेक्ट ज्ञान है और पहला सब्जेक्ट योग है। इसके लिए देह का पेपर आएगा, इसमें तीन बातें याद रखनी है। पहला, शरीर को स्वस्थ रखना। दूसरा, रेगुलर चेकअप। कई बहनें हमारे पास आती है, एक दिन में कम से कम 20 से 25 बहनें ओपीडी में आती है। कई बहनें आती है जिनको उदासी है, डिप्रेशन सा है, और वो सोचती है ये उदासी और डिप्रेशन हमको सेंटर की किसी समस्या की वजह से है, पर वास्तव में जब ब्लड टेस्ट किया तो पता चला थायराइड है 200, और वो थायराइड की वजह से डिप्रेशन था, और वो समझ रही थी कोई मानसिक व्याधि है, जबकि शारीरिक व्याधि के वजह से था। शरीर में इतनी सारी हलचल होती है, हार्मोनल चेंजेस इतने सारे होते रहते हैं फीमेल बॉडी में, मेंस्ट्रुअल साइकिल है वहां पर, इतनी सारी हलचल है, पीसीओडी हो सकता है, बहुत सारी चीजें हैं, उसके वजह से था वो, पर समझते हैं कुछ और है। तो रेगुलर चेकअप एटलीस्ट साल में एक बार। और तीसरी बात बीमारियों के संबंध में, तीसरी बात, यदि बीमारी आ जाए तो वीरता से सामना करना है। रोना नहीं है, ये क्यों आ गई, ये ऐसा क्यों आ गई, मुझे ऐसा क्यों होता है। कितनी सारी दादियों को हमने देखा आंखों के सामने, पालू दादी, शांतामणि दादी, मनोरिंद्रा दादी, यहां प्रिक कर रहे, यहां प्रिक कर रहे, यहां लाइन ले रहे, यहां लाइन ले रहे, कुछ लेना देना नहीं, जो करना है करो, इतना शरीर से डिटैच्ड, यहां से इंजेक्शन, वहां से इंजेक्शन, यहां लाइन मिली शाम तक आउट, इतनी पेपरी थिन स्किन, कोई फर्क नहीं, इतना शरीर से डिटैच्ड। तो ये तीन बातें हैं। एक तो ऐसा जीवन शैली हो कि जिसमें शरीर बीमारी ना पड़े, ये ध्यान रखना है। उसके लिए एक्सरसाइज, डेली वॉकिंग, उसके लिए व्यायाम, उसके लिए प्राणायाम। नहीं आता है तो सीखना है और शरीर को स्वस्थ रखना है। कितनी बहनें आती है, एक बहन आई थी बीच में, 400 शुगर था। हमने कहा इसका आप क्या कर रहे हो, हम क्या कर रहे हैं, बाबा को जीवन दिया है ना, वो करेगा, दवाई दवाई तो नहीं लूंगी, और ब्रह्मा भोजन तो खाना ही है, और सारा मिठाई भी खानी ही है। रही बात शुगर की, तो भगवान क्या कर रहा है। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, जो बच्चे अपनी गलती के कारण बार बार बीमार पड़ते हैं, अपनी गलती के कारण, बाप दादा उन्हें ज्ञानी और योगी आत्मा नहीं कहते। शरीर को चलाना नहीं जानते तो राज्य को क्या चलाओगे। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के सारे। देह को स्वस्थ रखना, कितनी भी व्यस्त दिनचर्या हो, वॉकिंग के लिए थोड़ा टाइम, या तो फिर छत पर वॉकिंग, या तो एक्सरसाइज, या तो प्राणायाम, या तो कुछ एक्सरसाइज होनी चाहिए, नहीं तो मोटापा और बाकी बीमारी आएगी एक एक करके, शुगर, बीपी, और कुछ या और कुछ। हर हफ्ता में हॉस्पिटल में कोई ना कोई बहन एडमिट होती है जिसको फर्स्ट टाइम पता चलता है बीपी है, फर्स्ट टाइम पता चलता है शुगर है, फर्स्ट टाइम पता चलता है थायराइड है, आज तक कभी चेक ही नहीं किया। जरूरत ही नहीं, क्यों चेक करे, बाबा चला रहा है। दूसरा पेपर शरीर का, तीसरा पेपर जो माया लेगी वो है साथियों के द्वारा पेपर। हमारे सेंटर पर कौन रहते हैं जो हमारे आसपास है, हमारी साथी बहनें, जन जन से जिससे लड़ाई थी वही आई है हिसाब किताब चुक तू करने। वो किसी एक एरिया की का राजा था और हम किसी एक एरिया के राजा, हमने उस पर आक्रमण कर दिया, उस राज्य को हरा दिया, वही राजा अभी क्या बनकर आई है, साथी बनकर आई है। हम जमींदार थे, वो बेचारा गरीब किसान था, उसकी जमीन भी हड़प ली, सारे मर गए भूख से, अब वही किसान हमारे ही साथ, हमारे साथ रहती है, कुछ तो करेगी कि नहीं करेगी। सारे हिसाब किताब ब्राह्मणों के हिसाब किताब ब्राह्मणों के द्वारा ही चुकतु होंगे, अव्यक्त तो महावाक्य है बाबा के। और ये हिसाब किताब की भी कल कहा था एक यात्रा है, इसको भी सुखद बनाना है। जो हिसाब किताब है उसको उतना ही रहने दो, नए नहीं क्रिएट करना है, इसको ही न्यूट्रल कर देना है। इसके लिए आपसी व्यवहार प्रेम का कल की साकार मुरली में था, आपस में प्रेम से चलो, लून पानी नहीं, झगड़ा नहीं, एक का दूसरे से नहीं बनता, उधर से वो आता है या इधर से, इधर मुंह। एक बहन आई थी, कहती थी चेस्ट पेन होता है, तो ईसीजी कराया, ईसीजी नॉर्मल। कब होता है? चढ़ा चढ़ते हैं भागते है? नहीं, नहीं नहीं तब नहीं होता है। एक आत्मा है, जैसे ही सामने आती है वो यहां पेन होता है एकदम इधर। अब क्या करें, एंजियोग्राफी करें क्या करें, बाकी नहीं होता है। केवल एक आत्मा है, जैसे सामने आ गई इधर एकदम से भारीपन होता है। कौन सा पेन है ये? एंजाइना, कार्डियक, कैड? घृणा इतनी भरी है किसी आत्मा के लिए, इतनी नफरत से भरा हुआ है हृदय कि वो सामने आते ही हलचल होती है। अगर उसकी कोई तारीफ कर दे आकर कि उसने सेवा अच्छी की, तो बस फिर तो ईर्ष्या की अग्नि वर्षा होती है। अभी अभी आए और हमसे आगे जा रही है ईर्ष्या, आग है, आग जलाती है। और दूसरी बात, हम क्यों ईर्ष्या करें? अगर कोई आगे जा रहा है, अगर कोई ज्यादा सेवा कर रहा है, उसका एक दूसरा पहलू भी है। हो सकता है उस आत्मा के ज्यादा हिसाब किताब है उनके साथ जिनकी वो सेवा कर रही है, इसके लिए उसको तो करनी ही है, उसी के द्वारा संदेश मिलना है। हम क्यों ईर्ष्या करें? किसी दूसरी बहन को सफलता ज्यादा मिल रही है, मिलने दो। हम अगर ईर्ष्या करेंगे तो सफलता हमसे ईर्ष्या करेगी और दूर भागेगी। साथियों में प्रेम पूर्वक व्यवहार और साथियों को आगे बढ़ाने की भावना। हमें यहां व्यक्तित्व की पूजा नहीं है, कोई व्यक्ति आगे जाता है तो संस्था आगे जा रही है। इसलिए एक सेवा केंद्र और दूसरा सेवा केंद्र, एक बहन और दूसरी बहन, इनमें ईर्ष्या ना हो। रमेश शाह जी एक अनुभव सुनाते थे, बड़ा ही खराब। ब्रह्मा कुमारी बहने और भाई पहुंचे गवर्नर के सेक्रेटरी के पास, हमारे यहां शिवरात्रि का प्रोग्राम है, आइए। उन्होंने कहा ठीक है। फिर थोड़े देर के बाद दूसरे सेंटर के लोग और बहने आई और उन्होंने कहा हमारे यहां शिवरात्रि का प्रोग्राम है, आइए। उन्होंने कहा हम ऑलरेडी आ रहे हैं आपके यहां। कहां आ रहे? उस सेंटर पर। इन्होंने कहा वहां मत जाओ, वो अच्छे नहीं है, हमारे यहां आओ। क्या सोचेगा वो? उधर मत जाना, वो ठीक लोग नहीं है, आप हमारे सेंटर पर आओ, हम तुमको लेने आएंगे, हमारा बड़ा है, पैसे इधर ज्यादा है, वो तो गरीब है, क्या करेंगे, आपके लेवल का नहीं है। सर्विस है या डिससर्विस? लोगों को क्या पता, वो तो समझते ब्रह्मा कुमारी एक है। हमारे आपसी मतभेद, यज्ञ को बाहर के शत्रुओं से भय नहीं है, अंतर कलह से भय है। ब्राह्मण ब्राह्मणों से टकराएंगे, यहां भय है सबसे बड़ा। दूसरे हमको कुछ नहीं कर सकते, बाहर के शत्रुओं से बिल्कुल भय नहीं है, विकारों से भी इतना भय नहीं है, आंतरिक कलह अंतर द्वंद से भय है। और उसके कारण हम ना बने, निमित्त हम ना बने, तो साथियों के द्वारा भी पेपर आएंगे। अगर आते हैं तो सहनशीलता से चुकतु करने हैं, प्रतिकार नहीं करना है, प्रतिशोध की भावना नहीं रखनी है। चौथा पेपर छोटों से पेपर, छोटी छोटी कन्याएं, उनसे भी भय लगता है कोई बहनों को, ये हमसे आगे ना चली जाए, ये बोलती जरा अच्छी है, दिखती थोड़ा अच्छी है, ये हमसे आगे ना चली जाए, उनसे भी भय रहता है। उसमें कोई विशेष कला है, एंकरिंग थोड़ी इसकी बहुत ही अच्छी है, इधर भय, इधर चिंता, इधर असुरक्षा का भाव, इनसिक्योरिटी। हर आत्मा अपना भाग्य लेकर आई है और कोई किसी को रोक नहीं सकता। भाग्य से ज्यादा समय से पहले बोलो किसने पाया है, उसको जितना मिलना है उतना मिलेगा, कोई उसे रोक नहीं सकता। और हमें छोटों की पालना करनी है। पहले हम करते थे बड़ों को सम्मान दो, छोटों को प्यार। अभी छोटों को प्यार से कुछ नहीं होता है, उनको भी क्या चाहिए? सम्मान। प्यार से कुछ नहीं होगा, सम्मान दो उनको भी। जितना सम्मान दूसरों को देते हो उनको भी उतना ही सम्मान चाहिए। तो छोटों की भी पालना करनी है, मां बनकर पालना करनी है सेंटर पर अपने छोटों की। एक है मां, एक है मातृत्व, दोनों बहुत ऊंची अवस्था है। मां तो बहुत कोई भी बन सकता है, शरीर से शरीरों को निर्माण करना संसार की हजारों लाखों स्त्रियां कर रही है, पर मातृत्व ऊंची अवस्था है। मदरहुड, मम्मा, मात, मधुर, मदरहुड था मम्मा में, मातृत्व था। मातृत्व के लिए शरीर से शरीरों को निर्माण करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो भावना है कि मैं जगत जननी हूं, सबकी मुझे पालना करनी है। और मां को खुशी होती है उसके बच्चे अगर आगे जाते हैं उससे भी, तो जैसे पिता को खुशी होती है मां को भी होती है। तो जितनी कन्याएं हैं उनकी भी पालना करनी है, जितने कुमार से सेवा केंद्र में आते हैं उनकी भी पालना करनी है। और कुमारों को केवल दो ही चीजें चाहिए, वो दे देना प्लीज सभी ब्रह्मा कुमारी टीचर्स। कौन सी दो? एक तो ब्रह्मा भोजन और दूसरा स्तुति। खुश हो जाते हैं, जीवन स्वाहा कर देंगे सेवा में। अगर ये दो नहीं दिया, इतनी भाग भाग के सेवा की, बहन जी ने सबका नाम लिया और हमारा नाम ही लिया, जबकि सबसे ज्यादा इधर बाइक लेकर उधर बाइक लेके इधर ये कर उधर वो कर हम कर रहे थे और हमारा नाम ही नहीं। थोड़ी सी कर देना ना, ठीक है। ज्यादा मत करना, कंट्रोल्ड प्रेज, और सबके सामने कर दो तो थोड़े ज्यादा खुश हो जाते हैं। पूछ लेना कभी कभी बीच बीच में भोजन के लिए, कभी कभी, नॉट एवरी डे, कभी कभी। प्रेम, प्रेम चाहिए, कन्याओं को पालना चाहिए, कुमारों को भी पालना चाहिए। और जिस सेंटर पर जितनी अधिक कुमारियां वो खिला हुआ बगीचा होगा, और जिस सेंटर पर जितने अधिक कुमार वो उस बहन की योग्यता का प्रमाण है, उसके मां होने का प्रमाण है। और जहां अकाल पड़ा है कुमार और कुमारियों का, शायद हृदय में प्रेम का अकाल पड़ा है। सबकी पालना करनी है, पर उनसे भी पेपर आएंगे, वो भी रूठना रूसना नाराज होना कुछ ना कुछ तो करेंगे। तब अहंकार को थोड़ा नीचे रख देना अपने, और उनको समा लेना अपने अंदर। फिर उसके बाद का पेपर है बड़ों से पेपर। ये पूरे यज्ञ में हरेक के ऊपर कोई ना कोई है, हरेक का इंचार्ज कोई ना कोई है। ऐसा कोई नहीं है कि उसके ऊपर कोई नहीं है। हायरार्की जो है हरेक के ऊपर कोई ना कोई है, और बड़ों से भी पेपर आएंगे। क्या करना है तब? हमें अपने संकुचित दृष्टि से ये दिखाई दे रहा है कि ये जो मुझे बताया जा रहा है ठीक नहीं है, पर शायद मेरे लिए वही ठीक है, क्योंकि उनके द्वारा जो बोल रहा है स्वयं भगवान बोल रहा है। एक ऐसी पूरी मुरली डेट हमको याद नहीं है जिसमें भगवान ने यही एक टॉपिक लिया हुआ है। तुम क्या सोचते हो, बाप बुद्धू है जो उसको तुम्हारा इंचार्ज बनाया? यहां तक बोला है बाबा ने, और उनके मुख से जो निकलेगा वो कुछ ऐसे ही नहीं निकल रहा है, भगवान की टचिंग, भगवान के ही शब्द है उनके मुख से निकल रहे हैं। और जो भी निमित्त आत्मा है पूरे यज्ञ में, नीचे से ऊपर तक, मधुबन से लेकर तो सेवा केंद्र से गीता पाठशाला से लेकर, हरेक के ऊपर कोई ना कोई है, तो उनके द्वारा जो डायरेक्शंस मिलते हैं, ये ना सोचो कि इसमें पक्षपात है, पार्शियलिटी है, या कुछ है। हरेक को वही मिल रहा है जो उसे मिलना चाहिए, हरेक के साथ वही हो रहा है जो होना चाहिए। ड्रामा न्यायकारी है, किसी के साथ अन्याय नहीं हो रहा है। और यहां अपने अहंकार को थोड़ा नीचे रखना है, इसके भी मार्ग से। कभी किसी केंद्र की बहनें गुलजार दादी से मिले थे और साहब ने बहुत कंप्लेंट की उनके निमित्त की। तो दादी ने कहा था उन छोटी बहनों को, तुम उसकी मां बनकर पालना करो। तो पेपर आएंगे पर उनसे सीखते जाना है। ये भी एक पेपर है। कितने हो गए? 5। छठवां पेपर स्टूडेंट्स के द्वारा पेपर, स्टूडेंट से पेपर आएगा। जिस माता को हमने कोर्स कराया और जिस माता को हमने किचन में एंट्री दी और जिस माता को लेकर मधुबन में गए और जिस माता को बाबा से मिलाया, वही माता एक दिन विरोध में खड़ी हो जाएगी और जाकर हमारी कंप्लेंट कर देगी। यह भी हो सकता है। जिस कुमारों की हमने इतनी पालना की, वही एक अपना गुट बनाकर हमारी निंदा करने लगेंगे। यह भी हो सकता है और यह हुआ भी है, कई जगह हुआ है। इसके लिए स्टूडेंट्स की पालना तो करनी है, उन्हें प्रेम तो देना है, परंतु डिस्टेंस, वो उधर हम इधर, क्या करते हैं वहां जाके हमें क्या पता। ऊपर से कितना ही कोई अनन्य दिखता है, कितना ही वो कुमार कमरे में कमरा बंद करके टीवी पर इंटरनेट पर क्या देखता है, किसको क्या पता। जिसको राखी बांध रहे हैं उसके मन में हाथ पकड़ने का संकल्प है, दिखता नहीं है, अवसर की तलाश है। पालना तो सबकी करनी है परंतु डिटैच्ड, वो उधर हम इधर, वासना की चक्की में पिसे हुए वो लोग गृहस्थी, चाहे कितने भी अनन्य हो परंतु भोग की स्मृति तो है। इसलिए पालना जरूर करनी है परंतु अपने जीवन के सारे रहस्य और सारे राज उनकी तरफ नहीं खोल देने हैं, नहीं तो पश्चाताप होगा। वही सारी माताओं ने सेंटर की बहन को ही निकाल कर बाहर कर दिया जो उनकी निमित्त थी कभी। इसके लिए उनसे भी सावधान। तो स्टूडेंट्स के द्वारा भी पेपर आएंगे, उसके बाद में 7वां पेपर बाहर वालों के द्वारा, जो सहयोगी या असहयोगी बन जाएंगे। अभी अभी हम एक सेवा केंद्र पर गए थे, क्लास चालू थी, बीच में अनाउंसमेंट हुई बहन ने कराई कि सामने के घर के सामने जिसने कार खड़ी की है जल्दी से हटाओ, नहीं तो सामने वाला कह रहा है आग लगा दूंगा कार को, इतना विरोध, तुरंत हटाओ जिसने भी सामने के घर के सामने कार खड़ी की है। बाहर वालों का विरोध, इसलिए बाहर वालों का बीच बीच में प्रोग्राम, जैसे कल हमने यहां किया, बीच बीच में हर महीने में एक स्नेह मिलन होना चाहिए। उसके लिए एक दूसरी बात आपको बता दे, इंटरनेट पर जाओ और ये मार्च है, मार्च मास, अप्रैल मास में कौन कौन से डेज है उसकी लिस्ट निकालो, कामगार दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल, और उस दिन पे कुछ ना कुछ यहां प्रोग्राम करो। पहले डेज की लिस्ट, पूरे साल भर कौन से डेज है वो लिस्ट हमारे पास चाहिए। ऐसे ऐसे डेज है जो हमको पता भी नहीं, अर्थ डे, एनवायरमेंट डे, लेबर्स डे, महाराष्ट्र डे, ऐसे जो भी डेज है वो सारी लिस्ट, और फिर उस दिन कुछ आयोजन करना। एक तो ये, दूसरा एक नक्शा, जैसे ये बीड़ शहर है, पूरे बीड़ का एक नक्शा, कौन सी एरियाज है जहां पर हम अभी पहुंचे नहीं, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, डेंटल कॉलेज, कोई कंपनी, आईटी कंपनी, टेक्नोलॉजी, कुछ भी ढूंढो जहां हम गए नहीं और अरेंज करो वहां कैसे पहुंचे। हर एक को संदेश देना ही है, चैन से बैठना ही नहीं है, कुछ ना कुछ करते रहना है। चैन से बैठ गए तो बेचैनी आएगी, व्यर्थ आएगा, विकार आएंगे कहीं ना कहीं से। सेवा की निरंतर प्लानिंग, ये हो गया भट्टी का प्रोग्राम हो गया, तुरंत अब कुछ और करना है अपने लेवल पर, अपने छोटे से सेंटर के लेवल पर कुछ ना कुछ करते रहना। ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम, ब्लड डोनेशन प्रोग्राम, कुछ भी करो, इसका सत्कार उसका सत्कार कुछ भी करो, संसार की आत्माएं यहां आनी चाहिए। तो बाहर वालों की सेवा बहुत आवश्यक है, नहीं तो बहुत बड़ा विघ्न बन जाते हैं। किसी एक बहन ने बाहर वाले पर ट्रस्ट कर लिया, उसने जमीन दे दी पूरी सेंटर के लिए, कंस्ट्रक्शन चालू है, अभी पता चला वो जमीन उसकी है ही नहीं, किसी और की, अभी कोर्ट केस चालू है कब से। बाहर वालों से भी आएंगे, इसलिए बीच बीच में प्रोग्राम सकाश, और वो जब बुलाते हैं उनके प्रोग्राम में वहां पर भी जाना है, नहीं तो हम तुम हमारे इसमें आओगे, हम तुम्हारे इसमें नहीं आएंगे तो काम नहीं होगा। हम तो बाहर का खाते नहीं, हम ये हम वो हम याऊं हम त्याऊं, हमारा ऐसा हमारा वैसा, हम क्यों आए शूद्र कहीं के। उनको भी सम्मान देना पड़ेगा, उनको भी महान समझना पड़ेगा, उनकी भी सेवा करनी पड़ेगी, उनके भी शादी विधि में बुलाते हैं तो जाना पड़ेगा। सकाश देने तो जा ही सकते हैं, ये युक्तियुक्त होकर इसको, यदि कोई बहुत अनन्य है और जिसने यज्ञ की बहुत सेवा की है तो, और उसका दिल टूट जाएगा तो क्या कहेंगे। ये प्रश्न तो बहुत बड़ा प्रश्न है, इसका कभी लंबा उत्तर देना पड़ेगा, इसमें बहुत सारे पहलू है, परंतु देखकर हाँ ये भी एक कर सकते हैं कि यहीं बुला लो। पर हम बात कर रहे हैं, कभी कभी कोई इतना अनन्य होता है, इतना अनन्य होता है, वो कहता है केवल एक मिनट के लिए आ जाओ आशीर्वाद देने के लिए, ऐसा भी बोलते हैं। इसमें तो बहुत सारी बातें आएगी, इसका प्रश्न हम इसको यहीं छोड़ रहे हैं, 10 उत्तर आ सकते हैं अलग अलग। हाँ ना हाँ ना हाँ ना हाँ ना। एक माता ने मधुबन में हमसे पूछा था, किसी सेंटर पे गए तो बेटी की शादी है, मधुबन में इन्विटेशन भेजू क्या। एक माता का फोन आया था, आज मेरी बेटी को देखने वो आ रहा है लड़का, आप प्लीज वहां से मधुबन से सकाश देना। किसको पूछ रहे हम क्या कहें। शुभ भावना तो रखनी है, चलो शादी नहीं पर दूसरे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, दूसरे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। हम बात कर रहे, कुछ कुछ ऐसी अनन्य आत्माएं होते, 40 साल से कोई जुड़ी हुई है, वो कहेंगे एक पल के लिए आ जाओ बस। ऐसा बड़ी बड़ी विदेश की कुछ बहनों ने भी अनुभव सुनाया है इस तरह का, शादी के संबंधित। चलो इस प्रश्न को यहीं छोड़ देते, अगला पेपर मधुबन से पेपर। पहला पेपर कौन सा आता है, जाते ही पहुंचते ही अकाउंट से भी पहले एकोमोडेशन। वो भी एक पेपर है, बहुत बड़ा पेपर है। और भी दूसरे पेपर है, जाते समय एक माता जिसके घर में विरोध है और उसको हम लेके जा रहे हैं पहली बार बाबा से मिलने, और किसी स्टेशन पे उतर गई, ट्रेन चालू हो गई, हम आगे वो पीछे रह गई, ये एक पेपर है। किसी माता को हम लेके गए ग्रुप को, और वो माता को वहां शांतिवन में हार्ट अटैक आ गया, अब भागो उसको लेके हॉस्पिटल में, और फिर उसके घर, और फिर कोऑर्डिनेट करो। इसमें थोड़ी स्मार्टनेस की आवश्यकता है, कोई कोई बहन है इसमें बहुत अच्छे से सब हैंडल करती है, और कोई कोई एकदम डल रहती है, उसको कुछ समझ में नहीं आता, खुद ही घबरा जाती है, अब क्या करूं। कुछ भी हो सकता है, माताओं का तो कोई भरोसा नहीं, कहां कहीं चली जाती है और गुम हो जाती है, ढूंढो उस माता को अब। कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्चर, कोई बीमारी, कोई हार्ट अटैक, बाबा मिलन के बीच में ही किसी को कुछ हो जाता है, अब उसके पीछे लगो, एवर हेल्दी में जाओ और उसको एडमिट करो, इधर बाबा आ रहे और बाबा चला भी गया, हो गया मिलन। मधुबन में भी ढेर सारे पेपर आते, तो मधुबन से पेपर, टोली वाले पेपर भी आते हैं। और माया नगरी भी बहुत बड़ी है बाहर शांतिवन के, ये खरीदू वो खरीदू, ये ले लू वो ले लू, इधर से ले लू उधर से ले लू, उसके बाद है आर्थिक पेपर, अचानक दे वाला, अचानक पैसों की कमी, अचानक जो सहयोगी थे उन्होंने देना बंद कर दिया, आर्थिक पेपर भी आएगा। लक्ष्य एक ही रखना है, कुछ भी हो जाए भीख नहीं मांगनी है किसी से, बस बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, कोई दे तो अच्छा, नहीं दे तो भी ठीक, जो दे उसका भला, जो ना दे उसका भी भला, ज्यादा ही भला उसका। सहयोग कर दो तो बहुत अच्छा, नहीं करो तो बहुत अच्छा, पर हमें कुछ भी नहीं चाहिए किसी से, मांगना नहीं, मांगेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए। जितने लोगों ने ब्रह्मा बाबा से कहा हम जाते थोड़ी कमाई करके आते, बाबा ने कहा किसी को जाने की जरूरत नहीं है, फिर भी गए, और जो गए कभी लौट कर नहीं आए बेगरी पीरियड में। वैसा ही बेगरी पीरियड फिर भी आ सकता है सेवा केंद्र पर, तो हिलना नहीं है। सावल शाह की हंडी मुरलियों में आता है, भोलेनाथ का भंडारा है, अखूट है, अपने आप कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हो जाएगा। निश्चय, विश्वास, फेथ, ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस कि वो करेगा कुछ। और अंतिम 10वां पेपर, लीगल, कानून, पुलिस आ जाए या फिर स्टेशन पर हमको बुलाए या कोर्ट केस, गवाही देने जाना पड़े किसी एक सेवा केंद्र पर। ब्रह्मा कुमारी बहन ने फांसी लगा दी अपने आप को और मर गई, कोर्ट केसेस, पुलिस। इसमें भी बुद्धू नहीं बनना है, थोड़ा सा इंटेलिजेंट, कॉन्फिडेंस, हिलना नहीं है, हाँ, भयभीत नहीं होना है क्या कहेंगे लोग, ये भी एक पेपर आएगा और वो हो सकता है। तो ऐसे ये कितने हो गए, 10। सबसे पहला लौकिक, दूसरा शरीर की बीमारियां, तीसरा साथियों से, चौथा छोटों से, पांचवा बड़ों से, छठवा स्टूडेंट से, सातवा बाहर वालों से, आठवा मधुबन से, नौवा आर्थिक, और 10वां कानून से, कानूनी कार्यवाही, लीगल पेपर्स। ये भी हो सकता है, ये कोर्ट केस, वो कोर्ट केस, ये ऐसा हुआ, वो वैसा हुआ, ये सब में भी बुद्धू बन के डर नहीं जाना है, सामना करना है इन सब का। मम्मा ने कैसे सामना किया था कोर्ट में, निर्भय, निर्भीक होकर, उसी तरह। ये 10 मुख्य पेपर है, एक और पेपर है जिसकी चर्चा आगे की क्लास में करेंगे। इधर बाबा उधर बाबा, ओम शांति।